الحمد لله وكفى وسلام على عباد
Recording in
الذين اصطفى.
progress.
أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. آخر كلاس میں کیا چل رہا تھا؟ Anyways، جی، خطبہ حجت الوداع؟ نہیں، وہ تو پڑھ چکے تھے اس سے بھی پہلے. ایک اور Yeah. وقوف عرفہ ہم اس سے آگے بڑھ گئے تھے، تو حجت الوداع ودا تو چل ہی رہا ہے، اور 9 ہجری 9 ذی الحجہ کو جو وقوف عرفہ ہوا تھا وہ سب ہم پڑھ چکے تھے. پھر وقوف عرفہ کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر مزدلفہ روانہ ہو گئے تھے، اور مزدلفہ میں مشعر الحرام کی جو جگہ ہے جہاں پہ اب ایک بہت بڑی سی مسجد بنی ہوئی ہے، تو وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وقوف مزدلفہ فرمایا تھا، یعنی مزدلفہ کی رات جو گزارتے ہیں، پھر وہاں پہنچ کر کے مغرب بھی پڑھتے ہیں اور عشاء بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اذان ایک ہی ہوتی ہے لیکن اقامت مغرب کی، پھر مغرب کی نماز، پھر اقامت عشاء کی، پھر عشاء کی نماز، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کام اس رات کو نہیں کیا تھا جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ کرتے تھے. آپ بتائیں، تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو نہیں پڑھی تھی. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ فجر کی نماز پڑھی تھی، اور فجر ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں سے نکل گئے تھے مزدلفہ سے، اور فضل بن عباس حضرت عنہ کو اپنے پیچھے سواری پہ سوار کیا تھا، اور وہاں سے چل کر کے بطن محصر میں پہنچے. بطن محصر کسی کو یاد ہے؟ اس کی کیا بات بتائی تھی؟ جہاں ابابیلوں نے ابرہا کے لشکر کو ہلاک کیا تھا. ٹھیک ہے، وہ بطن محصر کی جگہ ہے، وہاں پہ نبی علیہ السلام والسلام نے اپنی سواری کو تیزی سے دوڑایا تھا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ منا پہنچ گئے تھے، اور منا میں کون سے والے شیطان کے پاس پہنچے تھے؟ گجراتی میں بتائیں گے وہ تو پھر صحیح جواب ہوگا، ورنہ نہیں. اموٹو شیطان کے پاس. ٹھیک ہے، تو وہ اموٹو شیطان کے پاس پہنچا، وہاں پر جو ہے نا وہ 7 کنکریاں اس کو ماری. تو 10 تاریخ کو صرف یہ جو بڑا شیطان ہوتا ہے نا اسی کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، دوسروں کو 10 تاریخ کو نہیں ماری جاتی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کری تھی 63 اونٹ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیے تھے، اور باقی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قربان کیے تھے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے طواف افاضہ کرنے کے لیے. افاضہ کو طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی حج کے فرائض میں سے ایک فرض ہے. ٹھیک ہے، اچھا، پھر وہاں سے زمزم کا پانی پیا تھا، طواف زیارت کرنے کے بعد زمزم کا پانی پیا، اور اس کے بعد پھر واپس آ گئے، اور پھر جو ہے نا اچھا یوم النہر، یعنی یہ 10 ہجری ہی چل رہی تھی، 10 ذی الحجہ ہی چل رہی تھی، 10 ہجری کی 10 ذی الحجہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج بھی ایک خطبہ ارشاد فرمایا، یہاں پہ ہم آ کر کے رکے تھے پچھلی کلاس میں. ٹھیک ہے، تو اب 10 تاریخ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو آج کل ہم لوگ بیان کرنا کہتے ہیں، بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس کے اندر نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر خچر پر سوار تھے، اونٹنی پر سوار نہیں تھے بلکہ خچر کے اوپر. اس کا کوئی نام ہے؟ نہیں، اس کا کوئی خاص نام نہیں ہے، بس یوم نہر کا بیان، یوم نہر کا خطبہ. ٹھیک ہے، اچھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر پھر اپنی اسی حیت پر پہنچ گیا ہے، اسی طریقے پہ پہنچ گیا ہے جس طریقے پہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا. ٹھیک ہے، यानी अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को जो है ना वो जैसे पैदा किया था, तो उसमें बाकायदा दिन है कि इस दिन को पैदा करना शुरू किया था, और फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे। सॉरी, सारी पूरी तरतीब जो है ना वो तफसीर की किताबों के अंदर लिखी हुई है कि पीर के दिन अल्लाह ताला ने ये चीज पैदा की, फिर उसके बाद मंगल के दिन ये चीजें पैदा की, बुध के दिन ये चीजें पैदा की, और फिर आखिर में अल्लाह ताला जो है वो अर्श के ऊपर अल्लाह ताला ने इस्तवा फरमाया। तो जैसे अल्लाह ताला ने ने हफ्ते के दिन बनाए थे और साल के महीने बनाए थे ना, तो बीच में आपको बताया था ना कि ये लोग गड़बड़ कर देते थे, आगे पीछे कर दिया करते थे, तो सारी चीजें जो है वो सेट हो गई। तो गोया के इस तरीके से ना, गोया कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जितनी फॉल्ट्स जो है वो इंसानों ने पैदा कर दी थी, वो फॉल्ट्स जो है ना वो रीसेट हो गई, रीसेट हो गई। ठीक है, जैसे कि आप लोग अगर कभी किसी के पास फोन है तो फोन के अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हो जाती हैं, लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, उसके अंदर वायरसेस वगैरह आ जाते हैं, तो इन सारी चीजों को जो है ना वो निकालने का एक तरीका ये होता है कि आप रीस्टार्ट कर दें कंप्यूटर को, या फोन को आप रीस्टार्ट कर दें। तो जितनी चीजें जो है ना वो हैंग हुई भी होती हैं, वायरस आए भी होते हैं, तो वो सारी चीजें रीसेट हो जाती हैं और फिर फ्रेश जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम के आने के बाद जब ये सारी मेहनतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर ली, तो बिल आखिर सारी जो फॉल्ट्स थी ना वो रीसेट हो गई। अब ये रीसेट होने का मतलब क्या है, ये खत्म हो गई सारी की सारी, दुनिया से सारा शिर्क खत्म हो गया, दुनिया से सारा कुफर खत्म हो गया, दुनिया से सारा जुल्म खत्म हो गया। क्या हो गया? नहीं हुआ। ठीक है, इंडिया से हो गया? इंडिया से तो जुल्म खत्म नहीं हुआ। ठीक है ना, यूरोप से खत्म हो गया? यूरोप से भी जुल्म खत्म नहीं हुआ। अफ्रीका से खत्म हो गया? अफ्रीका से भी खत्म नहीं हुआ, हत्ता के शाम से भी खत्म नहीं हुआ। शाम तो बहुत ही करीब था ना। ठीक है, रोमन एम्पायर तो अभी भी थी, पर्शियन एम्पायर भी अभी भी थी। तो क्या खत्म हो गया, क्या रीसेट हो गया, क्या सब कुछ ठीक हो गया, क्या ठीक हो गया, जल्दी से बताएं क्या ठीक हो गया। सब कुछ ही तो खराब था, फिर ठीक क्या हो गया है? क्या ठीक हो गया? तारीख ठीक हो गई, डेट्स ठीक हो गई, बस हफ्ता ठीक हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में इसीलिए आए थे हफ्ता ठीक करने के लिए, पीर, बुध, जुमरात, मंगल, ये सब ठीक करने के लिए। जी माशाल्लाह। ठीक है, एक चीज ठीक हुई, क्या चीज ठीक हुई? दीन इस्लाम ठीक हो गया, फिर से ठीक हो गया। ठीक है ना, दीन इस्लाम की जो डेफिनेशन थी ना वो डेफिनेशन खराब हो गई थी। सही है, दीन इस्लाम क्या दीन है, कौन सा दीन होता है, दीन इस्लाम क्या है? जी बहुत सही, माशाल्लाह, अच्छा जवाब दिया। दीन इस्लाम उस दीन को कहते हैं, उस वे ऑफ लाइफ को कहते हैं, उस वे ऑफ थिंकिंग को कहते हैं, उस सोच को कहते हैं जो कि नबियों के जरिए से इंसानों को मिली है। किसके जरिए से मिली है? नबियों के जरिए से इंसानों को मिली। ठीक है ना, और बाकी भी बहुत सारे दीन है दुनिया के अंदर। हिंदुइज्म इज ऑल्सो ए दीन। ठीक है, जुडेज्म इज ऑल्सो ए दीन, क्रिश्चियनिटी इज ऑल्सो ए दीन, और सेक्युलरिज्म ये भी एक दीन है। सेक्युलरिज्म का नाम सुना है? कॉम्युनिज्म ये भी एक दीन है। ठीक है, कैपिटलिज्म ये भी एक दीन है, मॉडर्निज्म ये भी एक दीन है, सारे दीन है, सब के सब दीन है, लेकिन एक है दीन इस्लाम। वो दीन इस्लाम, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन अदर अदियान एंड दीन इस्लाम और बाकी दीन? और बाकी दीन खुद से बन जाते हैं, कहां से, कौन बनाता है बाकी दीन? झूठे लोग बनाते हैं। उन झूठे लोगों को क्या कहते हैं कुरान मजीद में? जिसको हम भूल जाते हैं शैतान। ठीक है, दूसरे लोगों को शैतान कहते हैं। जो भी एक नया दीन इजाद करता है ना, दीन इस्लाम के अलावा, वो शख्स चाहे वो जिन हो चाहे वो इंसान, चाहे वो जिन हो चाहे वो इंसान हो, वो शैतान कहलाता है। ठीक है, वो शैतान कहलाता है। किसी आम गुनाहगार इंसान को शैतान नहीं कहते, ठीक है ना, हर गुनाहगार इंसान को शैतान नहीं कहते। शैतान किसको कहते हैं, शैतान किसको कहते हैं, जो दूसरों से गुनाह करवाता है, दूसरों को गुनाह के ऊपर मायल करता है ना, उसको शैतान कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो लोग दीन बनाते हैं तो वो दीन खाली अपने लिए बनाते हैं कि मैं इस दीन पे अमल करूंगा, नहीं, वो दूसरों में इस दीन को फैलाने के लिए दीन बनाते हैं ना, ठीक है ना। इस वजह से एवरी क्रिएटर ऑफ ए दीन इज अ शैतान, ठीक है। तो दीन इस्लाम में और दूसरे अध्यान में फर्क ये है कि दीन इस्लाम जो है ना वो अंबिया के वास्ते से दुनिया में आया कल, और बाकी दीन जो है वो शयातीन के वास्ते से दुनिया के अंदर आया। याद रहेगा सबको ये ना, $1 बिलियन में भी आपको ये चीज नहीं मिलेगी, मुझे भी अभी मिली है आपकी बरकत से, ये आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये याद रखिए, अगर समझ में आ गई है तो याद रखें, नहीं समझ में आई है तो समझ लें पहले, फिर उसके बाद याद रखें। जी क्या, इस्लाम के अंदर जो फिरके हैं, इस्लाम के अंदर जो फिरके हैं, तो वो फिरके जो होते हैं ना वो इस्लाम के अंदर नहीं होते, वो इस्लाम के बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ना वो अलग अलग दिन हो जाते हैं। विच पेज आर वी ऑन, वी आर नॉट ऑन एनी पेज, वी आर ऑन वन पेज, अंग्रेजी में वो कहते हैं वी आर ऑन वन पेज, इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये लेक्चर है बस, को गौर से सुने और समझने की कोशिश करें, सही है। अच्छा, तो ये जो अंबिया के जरिए से जो दीन अल्लाह ताला ने भेजा था ना, तो शयातीन ने क्या किया था कि इसी दीन को मिस डिफाइन करना शुरू कर दिया था, गलत डिफाइन करना शुरू कर दिया कि नहीं, हज जो है ना वो, जैसे मिसाल के तौर पर वन एग्जाम्पल, कि हज जो है ना वो पैगंबरों ने बताया ना कि भी हज करना है, ठीक है ना। तो हज तो पैगंबरों का बताया वही तरीका है, लेकिन उस तरीके के अंदर बिदात दाखिल कर दी, और जो उस हज की बुनियाद थी अरफात का वकूफ, उसको निकाल दिया उसके अंदर से, है वकूफ अरफात के बगैर ही हज, सही है। तो दीन तो आया था पैगंबरों के वास्ते से, लेकिन उसके अंदर तब्दीलियां कर दी थी। तो नबी अलैहिस्सलाम के आने से क्या चीज रीसेट हो गई थी, दीन की डेफिनेशन रीसेट हो करके बैक टू ओरिजिनल फॉर्म, बैक टू प्योर फॉर्म ये हो गई थी, ठीक है ना। इंडिया में औरतों को अभी भी मर्दों के साथ आग में फेंका जा रहा था, यूरोप के अंदर अभी भी विच हंटिंग के नाम के ऊपर औरतों को और मर्दों को जो है ना वो लिंच किया जा रहा था, ठीक है। और अफ्रीका के अंदर भी इसी तरह के बहुत सारे मजालिम हो रहे थे, पर्शिया के अंदर भी बुत परस्ती अभी भी जारी थी, और रोमन एम्पायर के अंदर ईसा अलैहि सलाम को खुदा का बेटा मानना जाना अभी भी जारी था। ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, दीन इस्लाम रीसेट हो गया, ठीक है। एक दफा और दीन इस्लाम रीसेट होगा, वो कब, असल में ये जुमला सही नहीं है कि दीन इस्लाम रीसेट होगा, दीन इस्लाम रीसेट हो गया, अब इसने दोबारा खराब नहीं होना, ठीक है। तो दीन इस्लाम को अब कोई खराब नहीं कर सकता, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। कुरान मजीद के आने के बाद से जो है ना, फिर अब अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद उठा ली है, अब ये जो है ना वो खराब नहीं होने वाले, जब खराब ही नहीं होना तो किसी ना के रिसर्च की थोड़ी करना है, ठीक है ना। तो अब सिर्फ और सिर्फ हमारा काम ये है कि हम बस इसकी हिफाजत के लिए अपने तन मन धन की बाजी लगा दे रहे हैं, अपने हिफाजत, इस दीन की हिफाजत के लिए अपनी फिक्रें, अपनी मेहनतें, अपनी सोचें सारी की सारी लगाते रहे, ठीक है। इसमें हमारा अपना, दीन को कुछ नहीं होने वाला, डोंट वरी, दीन को कुछ नहीं होने वाला, तो होने वाला है तो हमारे ही होने वाला है, अगर हम जो है ना वो बुरे अध्ययन की तरफ चल पड़े तो हमारे ही बेड़ा गर्क होगा और किसी और का बेड़ा गर्क नहीं होगा, ठीक है। तो दुनिया के अंदर बहुत सारे मसले वगैरह जो आते रहते हैं ना, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला दीन को भी रीसेट कर देते हैं, अगर अल्लाह ताला चाहते हैं दीन भी रीसेट हो गया, जैसे नबी अलैहिस्सलाम के आने से दीन बिल्कुल प्योरीफाई हो गया, उसी तरीके से जो अब रीसेटिंग होगी ना, दोबारा जो रीसेटिंग होगी, ये रीसेटिंग अब दीन की रीसेटिंग नहीं होगी, क्योंकि दीन तो रीसेट हो चुका है, नबी अलैहिस्सलाम काम कर चुके हैं अपना। अब रीसेटिंग क्या होगी? अब रीसेटिंग जो है ना वो होगी कि जो दुनिया के अंदर इंसानों के गुनाहों की वजह से जो फसाद पैदा हो गया ना, बहुत ज्यादा जो है ना जो करप्शन पैदा हो गई दुनिया के अंदर, ये दुनिया की करप्शन जो है ना ये रीसेट हो जाएगी ईसा अलैहि सलाम के आने के। ठीक है, ईसा अलैहि सलाम दुनिया में आएंगे तो ये सारी करप्शन और ये फसाद जो है ना अल्लाह ताला इसको भी रीसेट कर देंगे। जी इमाम मेहदी जो है वो 1,000 साल वाले मुजद्दिद होंगे, 100 साल वाले तो छोटे छोटे मुजद्दिद आते हैं ना, जैसे उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, ये पहले मुजद्दिद थे, 100 साल वाले मुजद्दिद। ठीक है, और उस तरह से हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी मुजद्दिद थे। और हम कैसे हैं तो हम कहते हैं जी हजरत कासिम नानोथी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी मुजद्दिद थे। हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी मुजद्दिद थे। ये छोटे छोटे मुजद्दिद हैं, बड़े मुजद्दिद जो है ना वो सो फार दो का ही हमें पता है। एक तो मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह, वो 1,000 साल के ऊपर मुजद्दिद आए, और फिर दूसरे 1,000 साल गुजरने के बाद जो मुजद्दिद आएंगे वो इमाम मेहदी के नाम से मशहूर हैं, जिनका नाम जो है वो हदीस मुबारका के अंदर भी महदी के नाम से, मेहदी के नाम से उनका उनका जिक्र है। अच्छा, वो दीन को आके रीसेट नहीं करेंगे, वो दीन की तजदीद करेंगे कि बहुत सारे जो है ना गलत फहमियां वगैरह जो पैदा हो चुकी होंगी, बिदात वगैरह, तो वो उनको भी रीसेट कर देंगे, उनको भी ठीक कर देंगे। जी अल्फ़सानी का मतलब है सानी यानी दूसरा हजार, यानी 1,000 साल। ठीक है, यानी अब दूसरे 1,000 साल, दूसरा यानी 1,000 ईयर्स गुजर गए, अब जो सेकंड 1,000 ईयर शुरू हो रहे हैं ना ये उसके उसके मुजद्दिद, इस वजह से उनको अल्फ़सानी कहा जाता है। ठीक है, ये नहीं कि पहले एक अल्फ अव्वल पहले गुजरे थे, अब ये अल्फ़सानी है, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसके बाद ये फरमाया कि ये महीना कौन सा महीना है। ठीक है, अब नबी अलैहिस्सलाम ये सवाल कर रहे हैं, देखिए सहाबा कितने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने ये नहीं किया कि अच्छा लगता है नबी अलैहिस्सलाम भूल गए, चलो हम बता देते हैं, है ना, उन्होंने फौरन सोचा, सारे सहाबा ने जितने भी सामने मौजूद थे तो उन्होंने सोचा कि ये तो एक ऐसा सवाल है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि नबी अलैहिस्सलाम का जवाब ना पता हो। तो नबी अलैहिस्सलाम अगर पूछ रहे हैं तो इसलिए नहीं पूछ रहे कि हम नबी अलैहिस्सलाम को जवाब दें और हम आप को याद दिलाएं, बल्कि देर मस्ट बी ए रीजन, किसी वजह से नबी अलैहिस्सलाम इस किस्म का सवाल कर रहे हैं। तो सहाबा ने बेहतरीन जवाब दिया जो कि ये लोग अक्सर जवाब देते थे कि अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा बेहतर जानते कि ये कौन सा महीना है। ठीक है ना, सहाबा फरमाते हैं कि हम ये सोच रहे थे कि लगता है नबी अलैहिस्सलाम इस महीने का नाम कोई चेंज करके हमें बताने वाले। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस जवाब को सुन करके काफी देर तक खामोशी अख्तियार करी, फिर आपसे फरमाया क्या ये जिलहज्जा का महीना नहीं है, ये जिलहज्जा नहीं है, हज वाला महीना, जिलहज्जा का मतलब हज वाला महीना। ठीक है, तो फिर साहब ने जवाब दिया जी नबी अलैहिस्सलाम क्यों नहीं। तो आपसे फरमाया फिर कि ये कौन सा शहर है? अब ये भी एक ऐसा सवाल था, नबी अलैहिस्सलाम ऑब्वियसली न्यू कि ये कौन सा शहर है तो फिर क्यों पूछ रहे हैं। तो साहब ने जवाब दिया कि अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं कि कौन सा शहर है। तो साहब यही कह रहे थे कि हम सोच रहे थे कि लगता है कोई नया नाम रखने वाले हैं नबी अलैहिस्सलाम इस शहर का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खामोश हो गए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क्या ये बलदा नहीं है। बलदा से मुराद यहाँ पे मक्का मुकरमा ही थी। ठीक है, बलदहू यानी अल्लाह का शहर नहीं है, और अल्लाह का शहर क्या है, मक्का मुकरमा। तो सबने जवाब दिया जी अल्लाह के रबी सल्लम क्यों नहीं, ये बलदा ही तो है, अल्लाह का शहर ही तो है। तो आप सल्लम फरमाए कि अच्छा ये कौन सा दिन है। ठीक है ना, अगेन इसी किस्म का सवाल, ये कौन सा दिन है। फिर फरमाया साहबा ने अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे खामोश हो गए, यहाँ तक कि साहबा फरमाते हैं हमने समझा कि आप इसका कोई नया नाम रखने वाले हैं आज के दिन का भी। तो आपने फिर फरमाया कि क्या ये यौम नहर नहीं है, कुर्बानी का दिन नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा क्यों नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल कुर्बानी का ही दिन है। तो आपने फरमाया कि अच्छा सुनो कि तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी आबरू एक दूसरे पर ऐसे ही हराम है जैसे तुम्हारे इस शहर और तुम्हारे इस महीने में तुम्हारे आज के दिन की हुरमत है। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम जो है ना वो सहाबा को बेसिकली सोचने पे मजबूर कर रहे थे कि कि देखो तुम्हारे लिए ये दिन कितना कितना इम्पोर्टेंट है, कि भी मैं तुम्हें इस दिन के बारे में पूछ रहा हूँ कि कौन सा दिन है, ये कौन सा शहर है, ये कौन सा और क्या था, दिन शहर महीना, ठीक है। तो आप सरसरम जो है ना उसकी इम्पोर्टेंस को गोया के री इन्फोर्स कर रहे थे, सब लोग सोच रहे इसकी इम्पोर्टेंस को, और फिर फरमाया जो कि असल में फरमाना चाह रहे थे कि तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जतें जो है ना वो इस ऐसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि तुम्हारे नजदीक ये जगह इंपॉर्टेंट है और ये वक्त इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हराम है मतलब इज्जत वाला, एक दूसरे की इज्जत ऐसे ही करो जैसे कि तुम इस शहर की इज्जत करते हो, इस वक्त की इज्जत करते हो, ठीक है। तो हम मुसलमान एक दूसरे की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत करने वाले हो, ठीक है। मुसलमान कौन होता है? अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमुना मिन लिसानी ही व यदी। एक मुसलमान वो होता है कि जिससे दूसरे मुसलमान उसकी जुबान से भी महफूज हो और उसके हाथ से भी महफूज, ठीक है। अलबत्ता फुटबॉल के अंदर जोर की किक मार दें तो फिर तो वो पैर का मसला होता है, लगती रहती है एक दूसरे की किक सही है, लेकिन नहीं, हाथ से महफूज होने का मतलब यही है कि जानबूझ के किसी को पैर से भी ना मारे, ठीक है। तो वो किक मार करके फुटबॉल से लग जाना वो तो गेम का हिस्सा समझा जाता है, लेकिन अंगड़ी लगा करके किसी को गिरा देना जो है ना ये गेम का हिस्सा नहीं होता, ये फाउल होता है, ठीक है। तो इसकी कोशिश हरगिज ना करें फुटबॉल के अंदर। अच्छा, फरमाया कि तुम लोग बहुत जल्द अपने परवरदिगार से मिलोगे और वो तुम्हारे और तुम्हारे आमाल के मुताबिक तुमसे पूछेगा कि तुम क्या करके आए हो, जहां से देखो मेरे बात फिर पलट करके गुमराह ना हो जाना कि आपस में एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो, एक दूसरे को कत्ल करने लगो। फिर फरमाया कि बताओ क्या मैंने तबलीग कर दी? सहाबा ने कहा हाँ। आप सब फरमाया ए अल्लाह गवाह रहना, यानी जिस तरीके से एक दिन पहले ये बातें फरमाई थी तकरीबन वही बातें नबी अलैहि सलाम ने एक दिन बाद दोबारा रिपीट करी, ठीक है। तो रिपीटेशन से बात इंसानों को ज्यादा समझ में भी आ जाती है और ज्यादा याद भी हो जाती है, ठीक है। अल्लाह ताला खुद भी फरमाते हैं वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तन्फ़उल मोमिनीन, ये सारे के सारे मोमिनीन ही थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, तो इनको रिपीटेशन से फायदा हो रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जो शख्स यहाँ पे मौजूद है वो उस शख्स को जो कि मौजूद नहीं है मेरी बात पहुंचा दे, बलाग कर दे, पहुंचा दे मेरी बात, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो के सुनने वालों से यानी डायरेक्ट सुनने वालों से ज्यादा किसी बात को समझ सकते हैं लेकिन वो फिजिकली मौजूद नहीं है, लेकिन जब उन तक बात पहुंचेगी ना तो वो बात की गहराई तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। जबकि सुनने वाले जो है ना उन्होंने खाली जुबानी तौर पर बात सुन ली और उन्होंने अच्छा ये आप सुन फरमा रहे हैं, लेकिन असल में आप सुन का मकसद क्या है ये हर सुनने वाले को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इस वजह से ना हमें ये हुक्म है कि हम आगे फैलाएं बातों, आगे फैलाएं बातों नबी अलैहिस्सलाम की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया कि देखो शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि तुम्हारे इस शहर में अल्लाह ताला के अलावा कभी शैतान की पूजा की जाए, ठीक है। इस बात से मैं मायूस हो चुका है कि इस शहर के अंदर कभी उसकी पूजा की जाएगी, शैतान की पूजा की जाएगी, ठीक है। अच्छा, शैतान की पूजा तो मुशरिकी ने मक्का भी नहीं करते थे, उनके बहुत सारे बुत थे लेकिन उनमें से किसी बुत का नाम इबलीस नहीं था, राइट। किसी बुत का नाम शैतान भी नहीं था, बल्कि लात और उज्जा और न जाने और किस किस किस्म के उन्होंने नाम रखे हुए थे। तो शैतान की पूजा तो कोई भी नहीं करता, ठीक है। तो शैतान की पूजा करने का मतलब क्या हुआ? ये शैतान की पूजा करने का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा अमल करना कि जिसके करने से आप हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में दाखिल, ठीक है। शैतान की पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि शैतान का आप एक बुत बनाए और फिर आगे उसको सजदा करना शुरू करें। ये आज के दौर के अंदर एक दीन नया स्टार्ट हो गया है जो पहले कभी भी नहीं होता था, उसको सेटन वर्शिपर्स कहते हैं, सेटन वर्शिप है, ठीक है। वो बाकायदा एक बुत बनाते हैं उसका नाम सेटन रखते हैं, और लेकिन वो बहुत थोड़े लोग हैं दुनिया के अंदर, इतने कम लोग हैं गोया के हैं ही नहीं, ठीक है। तो बाकी इंसानियत जो है वो क्या सब रहमान की पूजा करते हैं? नहीं, रहमान की पूजा जो है वो सिर्फ ईमान वाले करते हैं, बाकी सारे शैतान की पूजा करते हैं, हालांकि शैतान का बुत नहीं होता कोई, ठीक है। तो उसकी वजह ये होती है कुफ्र, यानी शैतान की पूजा का मतलब यही होता है कुफ्र करते हैं, कुफ्र कर, ठीक है। कुदरतन कल अंकल से भी यही बात हो रही थी असली, कि शैतान जो है ना वो हमसे छोटे मोटे गुनाह के ऊपर राजी नहीं होता, वो कुफर करवाना चाहता है हर एक से, ठीक है, ताकि हमेशा हमेशा के लिए आदम अलैहि सलाम के जो ये बच्चे हैं ना, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के अंदर जाके सड़ना शुरू हो जाए। अच्छा, शैतान तो मायूस हो गया, लेकिन जो इंसानी शैतान होता है ना वो मायूस नहीं हुए, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम यहाँ पे किस शैतान की बात कर रहे हैं? इबलीस की बात फरमा रहे हैं, ठीक है। इबलीस तो हो गया मायूस के मक्का मुकरमा के अंदर कभी भी उसकी पूजा नहीं की जाएगी, लेकिन जो इंसानी शैतान होते हैं ना वो इतने बेवकूफ होते हैं, इतने बेवकूफ होते हैं कि वो शैतान जो है वो इन इंसानी शैतानों को जहन्नम में डालना चाहता है, लेकिन वो उसकी वफादारी के अंदर उससे भी आगे निकलने की कोशिश करते हैं। इसको एक ना उर्दू में मुहावरा है, सुना है कभी? शाह से बढ़कर शाह के वफादार, शाह से बढ़ के शाह के वफादार, यानी बादशाह भाई, जाहिर है बादशाह जो होता है वो चाहता है कि मेरा मुल्क जो है वो मेरी मिल्कियत में रहे, मैं इसका बादशाह रहूं, यहाँ पे मेरी बात मानी जाए, ठीक है। तो वो अपना वफादार सबसे पहले तो बादशाह खुद ही होता है ना, कि ही डज नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय हिज किंगडम। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उसके दरबार के अंदर, उसके चापलूस किस्म के लोग, जो कि जो है ना वो उससे भी बढ़ के उसके वफादार होते हैं, यानी वो बहुत ही आगे बढ़ बढ़ करके वो भी काम कर रहे होते हैं जो कि शाह भी नहीं करना चाहता था, जिससे कि शाह भी, यानी शाह डज नॉट इवन वॉन्ट के वो वाले काम हो, लेकिन वो ऐसे भी काम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को ना शाह से बढ़ के शाह के वफादार कहा जाता है। तो आज के दौर में शैतान से बढ़ के शैतान के वफादार कौन है आपको पता नहीं पता होगा, शायद इंडिया वालों को पता हो। एक इंडिया वाले अंकल ने हमें बताया था असल में ये बात, ठीक है। वो है आजकल के ना RSS वाले, ठीक है। इंडिया के अंदर एक होती है हिंदुओं की तंजीम, उसको कहते हैं RSS, ठीक है ना। वो पता है क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या उम्मीद है पता है? उनकी उम्मीद ये है, यानी दैट्स व्हाट दे प्लान टू डू, दैट्स व्हाट दे वांट टू डू, कि मक्का मुकर्रमा में मुसलमानों के प्रॉफिट ने आकर के जो सारे ये बुत खत्म कर दिया ना, हम वापस बुत लाएंगे मक्का मुकर्रमा के, हम इस घर काबतुल्ला के अंदर दोबारा से बुतों की परस्तिश शुरू करवाएं, ये है RSS का प्लान, ठीक है ना। तो ये कौन है फिर? ये शाह से बढ़ के शाह के वफादार हुए। ये शैतान तो हो गया मायूस, ये मायूस नहीं हुए। क्यों मायूस नहीं हुए? इसलिए कि ये ज्यादा बड़े बेवकूफ है, ये ज्यादा बड़े बेवकूफ, ठीक है ना। तो इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ अपने इस प्लान को कि हमने तो मक्का मुकरमा के अंदर बुतों की परस्तिश शुरू करवानी है, कर लो जो करना है, ठीक है ना। हमने कुछ नहीं करना, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, अल्लाह ताला विल मेक श्योर। जब भी आखिरी जमाने में मक्का मुकरमा की हिफाजत कौन करेगा? फरिश्ते करेंगे, मैं और आप नहीं कर सकते, फरिश्ते करेंगे मक्का मुकरमा की भी और मदीना मुनव्वरा की भी, ठीक है। किससे हिफाजत करेंगे भाई? कोई आके का कुछ करना चाहेगा उसी से हिफाजत करेंगे ना, जब हिफाजत की जरूरत ही नहीं तो फिर क्यों हिफाजत करेंगे, राइट। हिफाजत तो उस वक्त करते हैं जब हिफाजत की जरूरत होती है, यानी समवन इज गोइंग टू कम एंड ट्राई टू अटैक, ठीक है। अच्छा, हमें दुआ करनी चाहिए और हमें तैयार रहना चाहिए, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा दे इस हिफाजत का हिस्सा बनने के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो ये जो है वो 10 हिजरी का दिन मुकम्मल हो गया, फिर 11 हिजरी, 12 हिजरी और 13, सॉरी हिजरी नहीं, 11 जिलहज्जा, 12 जिलहज्जा और 13 जिलहज्जा को नबी अलैहिस्सलाम मीना में ही मुकीम रहे। उस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, फिर वो उस दिन के जो अमाल होते हैं, नमाजें पढ़ना, रमी करना, तीनों शैतानों को फिर 11, 12, 13 को रमी की जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का जिक्र भी खूब किया और जो है वो लोगों को दीन सिखाया भी, सारे काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे रहते हुए करते रहे और लोगों को याद भी दिलाते रहे कि ए लोगों, मुझसे हज सीख लो, मुझसे हज सीख लो, क्योंकि इसके बाद अब मैं दोबारा हज करने के लिए नहीं आऊंगा, ठीक है। इतना क्लियरली नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को बता दिया कि दिस इज इट, यही मौका है, मदीना तैयबा में तुम सारे लोग नहीं आ सकोगे, ठीक है ना, तुम सारे लोग वहां पे आकर के मुझसे चीजें नहीं सीख सकोगे, बाकी सब लोग घरों को चले जाओगे, तो यही एक मौका है कि जिसके अंदर तुम मुझसे सीख लो। अच्छा, फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने और भी खुतबात फरमाए और उसके बाद 13 ज़िलहज्जा को नबी अलैहिस्सलाम मीना से निकले और एक यानी मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुए, और रास्ते में एक जगह है वादी अबतह, तो वहां पर ना खीफे बनी कनाना एक जगह है, वहां पे नबी अलैहिस्सलाम ने थोड़ी देर के लिए कयाम किया और रात वहीं पे गुजारी। जोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें वहीं पे पढ़ी, और इशा की नमाज पढ़ने के बाद, ठीक है, 13 हिजरी को जब खत्म हो गई 13 हिजरी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसके बाद जो इशा की नमाज पढ़ी है ना, वो बनी ये खीफे बनी कनाना में पढ़ी है, और वहां से फिर नबी अलैहिस्सलाम गए काबतुल्ला और वहां पे जाकर के तवाफे विदा फरमाया, अलविदाई तवाफ, ठीक है, बैतुल्ला का अलविदाई तवाफ। ये वाजिब है, ये भी वाजिब है, ये फर्ज फराइज में से नहीं है हज की, लेकिन ये वाजिबात में से है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बहुत एहतमाम फरमाया और सब ने किया, सिवाय उन औरतों के जो कि उस वक्त तवाफ किसी वजह से नहीं कर सकती थी, बाकी सब के ऊपर ये वाजिब है, ठीक है। तो तवाफ विदा करके फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा का रुख किया, अपनी सवारी पे बैठे और मदीना तैयबा रवाना हो गए। ठीक है, किसी के पास कोई सवाल या कोई कमेंट हो तो वो अभी पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, अगर हमें जवाब पता होगा तो। जी
पहले भी
किन लोगों को पता था, नबी अलैहिस्सलाम को या दूसरे लोगों को? हाँ
हज कर रहे थे
हाँ
हम लोग, तो नहीं बात क्या
लोग हमेशा दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक वो लोग होते हैं कि जिनको उलमा कहा जाता है, और दूसरे लोग जो है ना, वो उनको जो हालात तो नहीं कहा जाता लेकिन उनको आवाम कहा जाता, ठीक है। तो जो उलमा होते हैं ना, तो उलमा भी दो किस्म के होते हैं, कौन कौन सी? हाँ, एक होते हैं उलमाए हक और दूसरे होते हैं उलमाए सू, ठीक है। उलमाए हक और उस उलमाए सू में क्या फर्क होता है, वो हक हक करते हैं या सू सू करते हैं? है? नहीं, ये फर्क नहीं होता, बल्कि उलमाए हक और उलमाए सू में फर्क ये होता है कि इल्म दोनों के पास होता है, लेकिन उलमाए हक जो हैं वो उस इल्म को जो है ना, वो ठीक ठीक लोगों को बताते हैं, जैसा कि उन्होंने ऊपर से सीखा होता है वैसे ही जो है ना वो आगे सिखाते हैं, और उलमाए सू जो हैं उनको भी इल्म होता है लेकिन वो लोगों को जब बताते हैं ना, वो उसमें गड़बड़ करके बताते, उसको चेंज करके बताते हैं, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम के तशरीफ लाने से पहले दुनिया से उलमाए हक जो है ना, उलमाए हक, ठीक है, वो तकरीबन खत्म ही हो गए थे, अगर कोई थे भी तो वो भी जो है ना, उनका कोई सुनने वाला नहीं था, कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं था, तो वो अगर किसी को बताते भी थे तो वो ऐसे ही था कि जैसे कि किसी ने सुना ही नहीं, तो फायदा क्या हुआ बताने का, वो जंग कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ठीक है। तो उसी तरह से उलमाए हक जो है वो लोगों को बता रहे हैं, किसी एक बंदे ने भी बात सुनी तो फिर फायदा क्या हुआ बताने का गोया के, ठीक है। तो इस वजह से ना, इन लोगों को पता था, जो इनमें से उलमा थे ना, उनको तो पता था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से हज किया था, लेकिन ये उसको जो है ना, वो मैनिपुलेट करके उसके अंदर तब्दीलियां करके फिर लोगों को बता दे कि नहीं, हज जो है ना, आज हम ऐसे करेंगे, हज इस साल हम ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे, इस महीने में नहीं करेंगे बल्कि उस महीने में करेंगे, और उसको ये कर देंगे और उसको वो कर देंगे ना, अपनी तरफ से उसके अंदर बिदात और खराफात वगैरह करते रहते थे। तो अब उसमें से यानी पूरा का पूरा हज तो जाहिर है चेंज नहीं किया उन लोगों ने, लेकिन उसके अंदर से बहुत सारी चीजें उन्होंने चेंज कर दी थी, तो इस वजह से पहले जो लोग हज किया करते थे वो उस गलत तरीके के ऊपर करते थे जो उनके उलमा को बता दिया करते थे, ठीक है। तो ये चक्कर चल रहा था सारा का सारा, नबी अलैहिस्सलाम ने आकर के इसको खत्म फरमा दिया और फिर से उलमाए हक की एक जमात तैयार कर दी, 1,24,000 उलमाए हक नबी अलैहिस्सलाम ने तैयार फरमा दिए, उस सारे के सारे सहाबा कराम कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब नबी अलैहिस्सलाम जो है वो मदीना तैयबा वापस रवाना हुए ना, तो रास्ते में फिर एक और वाकया पेश आया, ठीक है। वो वाकया ये था कि नबी अलैहिस्सलाम जो है ना, वो मक्का मदीना, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान एक मुकाम था जिसको के गदीर खम कहते हैं, गदीर खम, ठीक है। तो यहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम ने कयाम फरमाया, तो आपको पीछे बताया था ना कि जब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम ने रमजानुल मुबारक के महीने में यमन रवाना किया था कि यमन जाओ और वहां से लोगों के सदकात वगैरह इकट्ठा करके मदीना तैयबा लेकर के आओ, यानी बैतुल माल में लेकर के आओ, तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां पे ये काम कर रहे थे कि उनको इत्तला मिली कि नबी अलैहिस्सलाम जो है ना वो हज के ऊपर जा रहे हैं, तो आप ने अनाउंसमेंट फरमा दी थी, तो अली रतान जो है ना फिर वहां से रवाना हो गए और डायरेक्ट मक्का मुकरमा पहुंचे। ठीक है, अब जाहिर है सफर भी बड़े लंबे लंबे होते थे और बड़े वक्त के अंदर तय होते थे, तो अली रतान हो सकता है शवाल के महीने में रवाना हो गए होंगे और ज़िलक़ादा में पहुंचे होंगे, या समथिंग लाइक दैट, ज़िलक़ादा में रवाना होंगे और ज़िलहज्जा की 4 तारीख को मक्का मुकरमा पहुंच गए होंगे, लेकिन जल्दी में रवाना हुए। ठीक है, तो अली रतारा ने ना क्या किया था कि अपने रवाना होने से पहले जो है ना वो किसी को उनका नाम नहीं पता, किसको, ठीक है, किसी को जो है ना वो अपना वहां पर खलीफा या अपना कायम मकाम बना दिया था कि भाई तुम जो है ना वो बाकी लोगों को लेकर के बाद में आते रहना, ठीक है ना, बाकी जो सत्कार वगैरह रह गए हैं उन सबको कलेक्ट वलेक्ट करके तुम बाद में आ जाना लोग। ठीक है, अब ये जो साहब थे ना, जो भी थे सहाबा ने इनके नाम को छुपाया है, वी डोंट नो हिज नेम, सही। तो अब जो भी थे ना, तो ये जब वहां से ना लोगों को लेकर के चले थे ना, तो इन्होंने सोचा कि भाई माशाल्लाह हमारे पास जो है वो अच्छा खासा इस वक्त मालो दौलत वगैरह है, और होंगे ये लोग, इनके मतलब जाती मालो दौलत भी होगा इनके पास, तो इन्होंने जो है ना वो क्या किया कि कुछ अच्छे अच्छे यमनी जुब्बे वो मार्केट से खरीदे होंगे। ठीक है, तो यमनी जुब्बे जो है ना वो उन्होंने अपने पूरे के पूरे वफद को जो है ना वो पहना दिए। ठीक है, तो अब जब ये लोग जो है वो आ रहे थे, तो ये गदीर खम के मकाम से थोड़ा पहले जो है ना ये आकर के अली रज़ा तआला से मिले, अली रज़ा तआला भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे, तो अली रज़ा तआला ने देखा कि ये तुमने क्या पहना हुआ है भाई, ये जुब्बे किधर से आ गए, तुम ऐसे जो है वो चमकीले किस्म के और ऐसे अच्छे किस्म के जुब्बे तुम अपने पूरे के पूरे साथियों को पहनाए हुए हैं। तो उन्होंने कहा भी हमने इसलिए पहने हैं कि ताकि जब हम जा करके मिले ना मुसलमानों के साथ तो हम जरा सा अच्छे लगें, अच्छे प्रोमिनेंट दिखें और जरा सा उनको पता चले कि आप ही जरा अच्छे लिबास वास। अली रज़ा तआला की जो नेचर थी ना वो थी बिल्कुल ही फकीराना। ठीक है, तो वो जो है ना वो माल और दौलत से ना वो एक सोर्ट ऑफ एक तरह से उनको बिल्कुल कोई कोई उनको तलब नहीं। ठीक है, और उनको अच्छा नहीं लगता था कि भाई पैसा जमा करना और अच्छे कपड़े पहनना, बहुत ही सादा रहते थे, सारी जिंदगी उनके ऊपर ज़कात ही फर्ज नहीं हुई, यानी इतने पैसे भी उनके पास नहीं हुए जिनके ऊपर 1 साल गुजरे कि वो ज़कात दे सकें। ठीक है ना, बहुत कम मकदार होती है ना पैसे की जिसका 1 साल गुजरने के बाद ज़कात हो जाती है, उनके पास सारी जिंदगी इतने पैसे भी जमा नहीं। ठीक है, बेचारे जब नबी अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया था कि भाई फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से आपका निकाह होगा, ठीक है, तो अब उनके पास कुछ था ही नहीं कि मैं मेहर में क्या दूंगा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को। ठीक है, तो अब उसके लिए भी है ना कहीं से वो अच्छा वो एक जरा पड़ी हुई थी तो वो जरा जो है ना उसको बेच करके तुम कुछ खरीद दो, उसको जो है वो मेहर में दे देना, इस तरीके से उन्होंने शादी भी करी थी नबी अलैहिस्सलाम की बेटी से। ठीक है, तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है ना ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने ना इन सबसे वो उतरवा दिए। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली अली रतान की रिप्रेजेंटेटिव से ना, उन्होंने ही इनको अपना नायब बनाया था ना, तो अली रतान फेल्ट रिस्पॉन्सिबल कि भाई ये जो काम कर रहे हैं तो ये तो मेरे को या के कहने के ऊपर ये काम कर रहे हैं, अली रतान नहीं तुम ये सब उतारो, नबी अलैहिस्सलाम से मिलने से पहले पहले उतारो इनको। इसके ऊपर मुझे ख्याल आया एक जमाने में हमें जीन्स की पैंट से बड़ी मोहब्बत थी, अल्लाह माफ करे, ठीक है ना, गलतियां इंसान करता है, तो हम जो है ना वो ये ऊपर से जुब्बा और नीचे से जीन्स की पैंट, इसके साथ हम चले गए अपने हजरत जी से मिलने के लिए। तो हमारे साथ जो हमारे टीचर्स है ना, तो वो बड़ी देर से बर्दाश्त कर रहे थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन बिलाखिर जब बिल्कुल मिलने के लिए अंदर जाने वाले थे ना, उन्होंने मुझे कहा, काशिफ इफ हजरत जी सीज यू वेयरिंग दीज जीन्स ही इज किल यू, है क्योंकि हजरत जी को नफरत है इस याजूज और माजूज की तहजीब से, हजरत जी को नफरत है। ठीक है, और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है ना ये याजूज और माजूज ही फरमाते हैं इसको, हजरत जी, सही है। तो जीन्स जो है ना ये वन ऑफ दोज सिंबल्स है, सिंबल्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, उसके अंदर आप पेप्सी को भी ऐड कर लें और इस तरह की चंद और चीजों को भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब हमने ये सुना, हमारे तो पसीने छूट गए। तो चीज को ना, किल किल का मतलब ये नहीं था कि फिजिकली मार देंगे, बल्कि बहुत नाराज होंगे तुम इस तरह से देख देख करके। तो फौरन अपने दोस्तों ने, भाई किसी का पजामा किसी के शलवार जो कि हमारे साइज को पूरा आता हो, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के टीचर साहब की जो छोटे भाई थे ना, उनका शलवार जो है हमें फिट हो गई, उन्होंने लेकर के अपनी जीन्स को उठा के, ठीक है। और फिर जब वापस गए ना घर, तो सारी की सारी जीन्स को उठा करके जाए ना वो डस्टबिन, ठीक है, सारी बहुत अच्छी खासी कलेक्शन लगी हुई थी, सबको उठा कर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, कबूल फरमा ले। तो अली रतान ने भी ऐसे ही किया, ये उतारो हजरत जी से मिलने से पहले इन सबको उतार दो, क्योंकि उस वक्त हजरत जी नबी अलैहिस्सलाम ही थे ना, ठीक है। तो सबने उतार दिया, लेकिन उन लोगों को पसंद नहीं आई ये वाली बात, उनमें से किसी को पसंद नहीं आई होगी, तो उन्होंने ना जाकर के नबी अलैहिस्सलाम से शिकायत कर दी, भाई अली जो है ना उन्होंने जो है ना ऐसा किया, और वो तो बस है ना जो भी कहा, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उस मौके के ऊपर एक खुतबा फरमाया, ठीक है, लोगों को एक वास किया, खुतबा किया, और उसमें ना नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो मैं एक बशर हूँ, मुमकिन है कि अनकरीब मेरे परवरदिगार की तरफ से ना मुझे कोई बुलावा आ जाए, दुनिया से जाने का टाइम आ जाए मेरा, और मैं उस दावत को कबूल करूँ, क्योंकि अल्लाह ताला से मिलने की दावत आएगी तो मैंने मना को थोड़ी करना है ना, रफीक आला से जाकर के मुलाकात करनी है या रहमतुल्लाह। फिर उसके बाद ना नबी अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों की मोहब्बत की ताकीद फरमाई, ये देखो मेरे जो अहले बैत है ना उनके साथ तुम मोहब्बत कर, ठीक है ना, उसके लिए जो है ना वो ये मत देखना कि वो बड़ा है छोटा है ये है, बल्कि मेरी निस्बत को देखना कि वो मेरी फैमिली वाले है ना, तो मेरी निस्बत की वजह से उनसे मोहब्बत करना, मेरी फैमिली के लोग, ठीक है। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने अली रजी अल्लाह तआला की निस्बत से फरमाया, यानी अली रजी अल्लाह तआला के बारे में उस खुतबे के अंदर फरमाया, मन कुंतु मौलाहू अली यू मौला, ठीक है, कि जिसका मैं दोस्त हूं ना अली भी उसका दोस्त, जिसका मैं दोस्त हूं अली भी उसका दोस्त है, यानी अली जो है ना वो ऐसे हैं कि मेरी दोस्ती का मतलब यह है कि अली को भी उस, यानी अली रतान की ना नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी तारीफ फरमाई, ठीक है ना। अब क्यों तारीफ फरमाई, उसकी वजह यही थी कि कुछ लोग जो है वो अली रतान से उस वक्त नाराज होकर के बैठ गए थे, और नबी अलैहिस्सलाम जो है उनसे जो है उन्होंने शिकायत कर दी थी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस शिकायत को पसंद नहीं फरमाया, ठीक है, बल्कि अली रतान की फजीलत बयान फरमाई और लोगों को ताकीद फरमाई कि भाई तुम अहले बैत से मोहब्बत करो, और अली रज रतान जो है ना वो भी मेरे अहले बैत में से भी हैं, क्योंकि वो मेरे दामाद हैं, ठीक है, जिस तरह से अबू बकर सिद्दीक रज रतान जो है वो मेरे सुसर हैं, वो भी मेरे अहले बैत में से हैं, उमर फारूक रजान मेरे ससुर हैं, वो भी मेरे अहले बैत में से हैं, अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला वो मेरे ससुर हैं, वो भी मेरे अहले बैत में से हैं, उस्मान और अली ये मेरे दामाद हैं, ठीक है, तो ये भी मेरे अहले बैत में से हैं, तो तुम उनसे भी मोहब्बत करो। तो खुतबे के बाद जो है ना सबसे पहले हजरत उमर रजी अल्लाह तआला आगे बढ़े और अली रजी अल्लाह तआला को मुबारक भी बात दी कि भाई देखो नबी अलैहिस्सलाम आपके बारे में कितनी प्यारी बात फरमाई है ना, कि मैं जिसका दोस्त हूँ अली भी उसका दोस्त है, ठीक है। और उसके बाद जो लोग थे ना जिनके दिल में कुछ बात आ भी गई थी ना नाराजगी वाराजगी वाली अली रतान के बारे में, सबका दिल जो है वो साफ हो गया, और सबने अली रतान को आकर के गले लगाया, मुबारकबाद दी और अच्छी बात कही, ठीक है। तो अब ये इतनी सी एक बात हुई थी, अब जाहिर सी बात है कि शैतान ने जब जो है ना वो इस्लाम के अंदर एक बहुत बड़ा फितना पैदा किया कि भाई अली जो है ना वही सब कुछ है, हत्ता के कुछ ने तो अली रज़ा को जो है खुदा भी कहना शुरू कर दिया, कुछ ने कहना शुरू कर दिया कि अली रतान जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की तरह ही एक नबी के मुकाम के ऊपर है, किसी ने कहा कि नहीं अली रतान जो है ना वो बस पहले खलीफा अली ही होने थे। तो उन लोगों ने ना फिर इस किस्म की बातों को, नबी अलैहिस्सलाम के ऐसे कोई इरशादात वगैरह थे ना, उनको फिर इस्तेमाल किया कि देखो नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था कि जिसका मैं दोस्त हूँ उसका अली भी दोस्त है, और एक और मौके पे नबी अलैहिस्सलाम ने अली तआला को फरमाया था कि देखो अली तुम मेरे साथ ऐसी हो जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून अलैहिस्सलाम थे। तो इन बातों को फिर वो यूज करके ना अपनी गलत बातों को फिर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई इसका मतलब कहाँ से निकल रहा है कि भाई मैं तुम मेरे दोस्त, मैं जिसका दोस्त हूँ अली उसका दोस्त है, इसमें कहाँ से लेकर आया कि भाई ये तो नहीं नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ भी फरमाया कि भाई मेरे बाद जो है वो अली को तुम खलीफा बना देना, ठीक है, और अबू बकर रतानों को खलीफा ना बनाना, उमर रतानों को खलीफा, ये तो कुछ भी इसके अंदर इसका जिक्र नहीं है, ठीक है। तो खामखा जो है ना वो उल्टी सीधी अपने दलीलें पेश करना, ये तो बेवकूफी की बातें और गलत बातें। बहरहाल ये वाकया पेश आया था और आपको पता होना चाहिए, इसलिए कि जो ये लोग होते हैं ना, तो फिर वो जब हमें पता नहीं होता किसी बात का, तो वो ऐसी बातों को ला करके ना फिर हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं और हमें प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि हाँ देखो देखो ये गलत किया, और अली रतन उनको बनाना चाहिए था, और अबू बकर उन्होंने नाउद बिल्ला गलत किया, उमर रतन उन्होंने गलत किया। ठीक है, अगर हमें पता नहीं होगा तो हम आसानी से उनकी बातों में आ जाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, और गलतफहमी का शिकार हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब जो है ना, फिर नबी अलैहिस्सलाम जाहिर है गदीर खम से फिर मदीना तैयबा की तरफ रवाना हुए, तो वहां पे पहुंचे, और वहां पे पहुंच करके फिर नबी अलैहिस्सलाम ने एक और काम किया कि एक आखिरी, अपनी जिंदगी की आखिरी मिलिट्री एक्सपेडिशन यानी फौजी मुहिम जिसको उर्दू में कहते हैं, वो रवाना की। ठीक है, इसकी यूनिकनेस क्या थी कि नबी अलैहिस्सलाम खुद तो उसके अंदर शामिल नहीं थे। नबी अलैहिस्सलाम का आखिरी गजबा कौन सा था? उन्हें नहीं, आपसे भी किसी ने कहा था गजबाए तबूक, ठीक है ना, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम खुद शामिल हुए थे, वो तबूक का गजवा था और वो आखिरी गजवा था। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम में शामिल हो, यहाँ पे भी तबूक जी, तो इसमें नबी अलैहिस्सलाम खुद शामिल नहीं थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत उसामा बिन जैद बिन हारिसा, ठीक है, उसामा रज़ियल्लाहु बिन जैद रज़ियल्लाहु बिन हारिसा को इसका अमीर बनाया। ठीक है ना, जैद रज़ियल्लाहु बिन हारिसा, इनकी क्या खास बात है, कुछ खास बातें इनकी, मुंह बोले बेटे थे, और एक ही सहाबा है जिनका कुरान मजीद के अंदर नाम आया है। ठीक है, ये मेजर दो बातें हैं। और इनकी शहादत कब हुई थी? गजवाए या जंगे मूता के अंदर, जंगे मूता में इनकी शहादत हुई थी, जब नबी अलैहिस्सलाम ने अगर जैद को शहीद कर दिया जाए तो फिर जो है वो जाफर जतान को जो है वो बनाया जाए, फिर जाफर भी शहीद कर दिए जाए तो अब्दुल्ला इब्ने रवाहा को बनाया जाए, और जब अब्दुल्ला इब्ने रवाहा भी शहीद हो जाए तो फिर मुसलमान जो है ना वो खुद से सिलेक्ट कर ले। नबी अलैहिस्सलाम ने पूरी एसेंशन की जो है ना वो चेन बताई थी, उसी गजवा मूता के अंदर या जंगी मूता के अंदर जैद बिन हारिसा शहीद हुए थे, और वो जंग भी किसके खिलाफ थी? वो भी रोमन्स के ही खिलाफ थी। ठीक है ना, वो भी रोमन्स के खिलाफ थी, और रोमन्स के लिए जो दूसरा अब नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा ना, तो ये भी रोमन्स ही के खिलाफ भेजा, और उसमें जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु के बेटे उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु। अब उसामा रज़ियल्लाहु जो थे ना, ये बड़े कम उम्र थे उस वक्त, इनकी उम्र उस वक्त ना वही कोई 17-18 साल की होगी। ठीक है, इतने कम उम्र में नबी अलैहिस्सलाम ने इनको अमीर बना दिया लश्कर का, और उस लश्कर के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने सारे जो सीनियर मोस्ट सहाबत है ना, सबको जो है वो इनके तहत बना दिया। ठीक है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु भी यानी सबॉर्डिनेट हैं, उमर रज़ियल्लाहु भी हैं, अली रज़ियल्लाहु भी हैं, और जो है वो अब्बास रज़ियल्लाहु भी हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े उम्र वाले सहाबा, तजुर्बे वाले सहाबा, नबी अलैहिस्सलाम के साथ इतना लंबा लंबा वक्त गुजारने वाले सहाबा, लेकिन अमीर लश्कर इनके ऊपर, जिसको कहते हैं उर्दू जबान में कल का बच्चा, ठीक है, गोया के कल के बच्चे को जो है वो ऐसे बड़े बड़े बुजुर्गों के सामने के ऊपर अमीर बना दिया। ठीक है, तो क्यों करा ऐसे? एक वजह तो यही थी कि भाई ये इज केपेबल, ठीक है, ठीक है, बल्कि टेस्ट तो क्या, डिसिप्लिन सिखाने के लिए और उम्मत को यह सिखाने के लिए कि देखो चाहे तुम्हारा अमीर जैसा भी हो ना, जब वो अमीर बन गया है ना, तो अब तुम कितने ही बड़े हो, तुम्हें उसकी अताअत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब तुम उम्र में बड़े हो, फिर भी तुम्हें अमीर की अताअत करनी पड़ेगी, हत्ता कि तुम अगर इल्म में बड़े हो, इल्म में बड़े हो, अली रज़ियल्लाहु के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि अना मदीनतुल इल्म व बाबुहा अली, अली जो है वो मदीनतुल इल्म के दरवाजे हैं, कितना बड़ा मुकाम है अली रज़ियल्लाहु का इल्म के अंदर, अली रज़ियल्लाहु भी जो है वो उसामा रज़ियल्लाहु के नीचे, हत्ता के तुम तकवा में भी बड़े हो, फजल के अंदर भी बड़े हो, है तुम मेरे यारे गार थे, तुम मेरे साथ जो है वो हर वक्त लगे रहते थे, तुम्हारी नेकियां इतनी हैं, कल सुना था ना, इतनी नेकियां हैं कि पूरी उम्मत की नेकियां एक तरफ और तुम्हारी नेकियां एक तरफ, तो तुम्हारी नेकियां ज्यादा होंगी। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर किसी को अमीर बना दिया तुम्हें उसी की बात माननी। कल सुना था ना अमीर के एक छोटा सा एक और भी वाक्य सुना था ना अमीर साहब, हाँ वो जो खिदमत करते थे अमीर साहब है, अब तुमने जब मुझे अमीर बना लिया है ना, अब तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, चाहे मैं तुम्हारी खिदमत करूं फिर भी तुम्हें करवानी पड़ेगी, ठीक है ना। यानी खिदमत में भी जो है ना तुम अपनी नहीं चला सकते मेरी बात, यानी वहां उस मौके पर ना तुम अदब भी नहीं कर सकते, हुक्म के सामने अदब भी नहीं कर सकते। इसी को अरबी में कहते हैं अल अमरु फौक अल अदब, हुक्म जो है ना वो अदब से भी ऊंची चीज है। अब वो जो कल आप लोगों ने वाकया सुना था कि भाई वो अमीर साहब जो हैं वो चादर तान के खड़े हुए हैं और बारिश हो रही है और जो उनके छोटे साहब हैं वो बारिश से बच रहे हैं, अब अदब का तकाजा किया था, वो कहते हैं अमीर साहब बस हो गया राइट, दे मुझे चादर, आप नीचे बैठे मैं ऊपर चादर डालूंगा, क्योंकि अदब यही है। नहीं, अदब नहीं कर सकते आप, हुक्म के सामने अदब भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारे बड़े इस बात को समझते थे, इसी वजह से उन्होंने इतना तो कहा कि काश के मैं मर जाता और इस बात को मानता नहीं, लेकिन अब मान लिया है ना, अब तो माननी पड़ेगी, अब तो करना पड़ेगा, ठीक है। इसी वजह से ना हमारे दीन के अंदर बैत करना का मतलब यही है कि आप किसी को अपना अमीर मान लेते, ठीक है। जब आपने मान लिया तो अब उसकी भी माननी पड़ेगी। बैत करने का मतलब क्या है कि आपने उसको मान लिया अपना अमीर। बैत करने की डेफिनेशन को आप तो बुझे जी बैत क्या होती है, तो आप कहें बैत इज इक्वल टू किसी को अपना अमीर मान लेना, इसको बैत कहते हैं। अब उसके बाद क्या करना चाहिए, अब उसकी भी माननी है, उसकी भी माननी, सही है। बरेलियों की तरह नहीं, वो मानना है की नहीं माननी, शिया की तरह नहीं, को मानना है की नहीं माननी, ठीक है। अली को मानना है लेकिन अली की नहीं माननी, राइट। नबी को मानना है नबी की नहीं माननी, ठीक है। तो ये वाली गलती नहीं करनी है, को भी मानना है और की भी माननी है, अंग्रेजी वाले नहीं उर्दू वाले, ठीक है। अंग्रेजी में को का मतलब कुछ और होता है और की का मतलब कुछ और होता है। तो ये एक अजीब सा नबी अलैहिस्सलाम ने एक लश्कर रवाना कर दिया, लेकिन ये लश्कर जो है ना ये बस अभी असेंबल ही हुआ था और असेंबल होकर के मदीना मुनव्वरा से बाहर गोया के पहुंचा ही था बाउंड्री के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा की, और मकाम जुर्फ में जा करके ना इन्होंने खेमा जन हुए थे, ये खेमे वगैरह लगाए थे, क्योंकि अभी जो है ना वो कुछ बहुत सारे इंतजाम करने होते हैं कि जी अभी जरा वेपन्स वगैरह मजीद पहुंचाने हैं, खाने वाने का इंतजाम करना है जिसको कि आगे लेके जा सकें, कुछ और लोग रह गए हैं वो भी आकर के शामिल होंगे, तो एक तरह से ना ये गोया के समझ लें असेंबली पॉइंट, ठीक है। तो इनका असेंबली पॉइंट जो था ना वो था मकाम जुर्फ मदीना मुनव्वरा के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, ठीक है। अब ये लोग जो वहां पहुंचे हैं ना, तो उसी वक्त जो है ना मदीना मुनव्वरा से बहुत ही बुरी खबरें आनी शुरू हो, मदीना मुनव्वरा से बहुत ही बुरी खबरें, बल्कि सही मानों में अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा बुरी खबर आनी शुरू, सबसे ज्यादा बुरी खबर, जितनी बुरी खबर इंसानियत ने ना कभी सुनी थी और ना कभी इंसानियत आइंदा सुन सकती है, इतनी बुरी खबर, ठीक है ना। किस चीज की खबर, इतने बड़ी ट्रेजेडी की खबर, इतने बड़े सानहे की खबर कि जो कि दुनिया के ऊपर ना पहले कभी आया था और ना बाद में कभी आ सकता है। वो सानहा सिर्फ एक ही सानहा था, इस दुनिया से नबी अलैहिस्सलाम के पर्दा को मार डालने से, ठीक है। तो खबरें आनी शुरू हो गई कि नबी अलैहिस्सलाम की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, बहुत ज्यादा खराब हो गई है, और ऐसा लगना शुरू हो गया है कि नबी अलैहिस्सलाम विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इट, ठीक है। तो अब लोगों की तबीयत बहुत खराब हो जाया करती है ना। साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु जो है, नहीं साद बिन मुआज नहीं, साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु जो है ना, वो मक्का मुकरमा जब ये हजरतुल विदा के लिए गए, हाँ बिल्कुल असली खबर थी, तो साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु मक्का मुकरमा गए ना हजरतुल विदा के लिए, तो बहुत तबीयत खराब हो गई, इतनी तबीयत खराब हो गई कि उनको लग रहा था कि अब मैं बचूंगा नहीं, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम उनकी इयादत के लिए आए तो बहुत परेशान हत्ता कि रो रहे। तो फरमाया कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, ये बीमारी भी कोई रोने की चीज होती है। तो फरमाने लगे कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं इस जगह नहीं मरना चाहता। कहाँ? मक्का मुकरमा में नहीं मरना चाहता। क्यों? इसलिए कि इस जगह को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया है, अब मैं यहाँ नहीं मरना चाहता, अब मैं वहीं मरना चाहता हूँ ना जहाँ नबी अलैहिस्सलाम रहते हैं, मैं वहां मरना चाहता हूँ। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ फरमा दी, ठीक हो गए। ठीक है, इतनी बुरी तबीयत के बावजूद ठीक हो गए। नबी अलैहिस्सलाम की जो तबीयत इतनी खराब हुई, तो अब इतना के सहाबा कराम जो है वो, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम क्लियर इंडिकेशंस दे चुके थे कि बस दिस इज इट, अब मैंने इस दुनिया के अंदर नहीं रहना है, तो जब उसके ऊपर इतनी बड़ी तबीयत भी खराब हो गई तो सहाबा हैड नो डाउट कि बस अब नबी अलैहिस्सलाम हमारे साथ नहीं रहेंगे। वो इंडिकेशंस क्या थी वो इंशाल्लाह फिर अगली क्लास के अंदर अल्लाह की तौफीक से पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी अलैहिस्सलाम की सच्ची और सुच्ची और शदीद मोहब्बत अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आप लोगों की आओ अदब सीखने वाली क्लास इंशाल्लाह हमारे आरिफ साहब पढ़ेंगे।